और इस सारी बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि आपका वास्ता जिस कौम से पढ़ने वाला है वो कोई भोले लोग नहीं है, उनको खूब अच्छी तरह पता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। इसीलिए फरमाया वो औफू बी अहदी, और पूरा करो मेरे अहद को। क्या होगा? ऊफी बी अहदी कुम, मैं भी अपना अहद तुमसे पूरा करूंगा। वैया या फरहबून, पस सिर्फ मुझसे ही तुम डरो। अब इसे एक आयत में फिर बहुत कुछ है, टुकड़ा है आयत का, लेकिन सवाल आता है कि इधर लफ्ज अहद आया, ऊफू बी अहदी। अहद कहते हैं उम्मीद दिलाने को, ठीक है, किसी को उम्मीद दिला देना। यहाँ अहद से दो मानी लीजिएगा, पहला क्या है कि मैंने जो तुमसे अहद लिया था उसको पूरा कर लो। दूसरा, यहाँ अहद से मुराद क्या है? अहदनामा कदीम। ये मानी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तौरात का एक और नाम क्या है? अहदनामा कदीम। इंजील को क्या कहते हैं? अहदनामा जदीद। यानी बाइबल दो चीजों का मजमू है, तौरात और इंजील का। तौरात को अहदनामा कदीम कहते हैं और इंजील को अहदनामा जदीद कहते हैं। एक ही बाइबल है लेकिन यहूद बाइबल के पहले हिस्से को मानते हैं और क्रिश्चियंस आखिरी को मानते हैं। ये दोनों का फर्क ज्यादा डिटेल से सूरत आले इमरान की बिल्कुल पहली आयतों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊफू बी अहदी में क्या, एक तो ये कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मेरे साथ किए हुए अहद को पूरा कीजिए। वो क्या अहद था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। सूरत आले इमरान आयत 87 में आप पढ़ेंगे, वइज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना उतुल किताबा लतुबय्यिनन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु। और जब अल्लाह ताला ने इन लोगों से पुख्ता अहद लिया जिनको किताब दी गई कि तुम इस किताब को लोगों के सामने जरूर बयान करते रहोगे और इनको छुपाओगे नहीं। ये आयत किसकी कोर्ट में? अहद को अगर तौरात के मानों में लोगे। यहूद पर जवाल कब आया? जब इनके मजहबी तबके ने असल किताब छुपा दी। ये जुमला मैं हर साल ही बोलती हूँ जब भी ये आयतें पढ़ाऊं, कभी जब भी मौका मिले, कि यहूद का सबसे बड़ा जुर्म क्या था जिससे फिर इतने हिदायत के सफर से दूर हो गए कि इन्होंने किताब अवाम की रेंज से बाहर कर दी, छुपा ली। हालांकि हुक्म था आम करो, यही आयत आप दलील में लिख लें, आले इमरान 87। तो क्या मतलब है फिर अहद से? अहदनामा कदीम। जब किसी गिरोह ने अल्लाह की किताब को चंद दीनदारों की इजारादारी बना दिया, आलिम साहब इसको खोल सकते हैं, मुफ्ती साहब इसको समझते हैं और हाफिज़े कुरान इसको पढ़ सकता है, और बाकी मैं और आप, हम सब गुनाहगार जहन्नमी। औरतें कुरान नहीं पढ़ती, आम लोग कुरान नहीं पढ़ते, पहले 7 उलूम सीख के आओ फिर कुरान पढ़ो। अल्लाह के नबी हुज्जतुल विदा के मौके पे कह रहे हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया। 1 लाख का लश्कर था आपके सामने, क्या सारे आलिम थे? कई तो उसी मौके पे मुसलमान हुए थे, हो सकता है अभी किसी ने एक नमाज भी ना पढ़ी हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैसेज दे रहे हैं कि लोगों, जिसको एक आयत भी पहुंच जाए वो आगे सुना दे। ये पूरा रुकू जो है ना, ये भी और अगला भी लिख ले, मजहबी तबके के रवैये हैं। इतना कड़वा रुकू है ये कि मैं पढ़ते हुए भी रात को भी दुखी हो रही थी और अभी भी मुझे कोई मजा नहीं आ रहा इतना ये बातें सुनाकर। जब किसी कौम का मजहबी तबका असल दीन को छुपाकर फिरोई या साइड इश्यूज को हाईलाइट कर दे, दीन पे जवाल आ जाता है। चलिए ये भी बात हो गई। दूसरा अहद से क्या मुराद है? एक अहद तो ये हमने समझ गया, किताब कोई ना लेना। दूसरा अहद क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। सूरत माईदा ही में ये आयत आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये बात कह दी थी, वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराइल। इसके एंड पे क्या आता है? लैन अकमतुमुस्सलाता वआतैतुमुज़्ज़कात वआमनतुम बिरुसुली। ये वआमनतुम बिरुसुली का अहद था, बस ये जुमला लिख लें, आमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह कर्दन हसना। ये बता था कि तुम नमाज कायम करके जकात भी दोगे और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, फिर उनकी मदद भी करोगे और उनकी इज्जत भी करोगे और अल्लाह को कर्ज हसना दोगे, तो लाओ कफिरन नानकुम सैयातिकुम। ये है ऊफी बी अहदिकुम। सवाल लिखिए, अल्लाह उनसे क्या वादे पूरे करेगा? चले वो उनसे तो दो वादों की बात हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान ले और तौरात को आम कर दे। अल्लाह उनको जवाब में क्या देगा, इसी आयत के एंड पे, लाउ का फिरन्ना अनकुम सही आती कुम, तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा। दूसरा वादा, वलो उदखिलन कुम जन्ना तिन तजरी मिन तहती हलनहार, तुम्हें उन जन्नतों में दाखिल कर दूंगा जिसमें नीचे नहरें बहती हैं। तो अल्लाह का वादा मशरूत था। पहली अल्लाह की इनसे डिमांड क्या थी, आयत को देखिएगा, औफू बी अहदी, क्लियर हो गया बात। दूसरा तकाजा क्या था अल्लाह का इनसे, वइया यफरहबून, और सिर्फ मुझ ही से तुम डरते रहो। यानी यहूदी उलमा दुनिया से डरने लग गए, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें, लोगों का खौफ। अल्लाह सुबहान तआला ने इधर उस खौफ से निजात देते हुए कहा कि सिर्फ मुझसे डरो। क्यों? इसलिए कि लोगों का जो खौफ होता है ना, ये अल्लाह की इताअत का शौक छीनता है। इसको जम बनाए इस लेसन का, लोगों का खौफ अल्लाह की इताअत से रोक देता है। यहूदी उलमा दुनिया परस्त हो गए थे, मदीना में रहते थे ना, तो उस दौर के लोगों में इन्होंने अपने आप को कैसे मशहूर कराया, लोगों को खुश रखो, लोगों की बातें मानो, जो लोग आपसे चाहते हैं ना बस वही काम किया करें, ऐसी उल्टी सीधी बातें ना ज्यादा करें और वो ना करें बल्कि आप उधर रहें। तो जब लोगों का डर पैदा होता है ना, तो याद रखिए अल्लाह का डर कम होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज़ फरहबून इस्तेमाल किया है। अगर आप आयत 41 के एंड पे जाइए ना, तो फत्तकून का लफ्ज़ है, ठीक है, और आयत 45 में जाइए तो लफ्ज़ क्या है, खाशीन। ये खौफ के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं, बड़ा खूबसूरत रब्त है इन सबके बीच में। आप थोड़ा सा मेरे साथ रहें तो मैं चंद बातें आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ लफ्ज आया फरहबून, राहब किसको कहते हैं, यानी अरबी जुबान में आपको होता है 12 डिफरेंट वर्ड्स हैं जो लफ्ज खौफ को या डरने को साबित करते हैं, और ये 12 के 12 कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। मैं इस वक्त सिर्फ आपके सामने इन 3 को रखती हूँ जो इधर आपके सामने सबक में मौजूद है, वरना खाफा भी है, रा भी है, खजर भी है, औजस भी है, वजफ भी है, विजल भी है, रहब भी है। रहब किस खौफ को कहते हैं, पहले तो आप नोट कीजिए कि ये लफ्ज वही है जिससे लफ्ज राहिब है, सुना हुआ ना आपने बहुत दफा। तो रहब कहते हैं किसी चीज से बचने की कोशिश करना, यानी राहिब कौन होता है, जो दुनिया से डरता है। मतलब जैसे आपकी तरफ कोई खतरनाक चीज गिरती है ना, तो आप अपने आप को बचाते हैं, इसी तरह रहब ऐसा खौफ है कि अल्लाह के खौफ से दुनिया से गोशा नशीन होने वाले। इसी तरह रहबानियत भी है, सूरत हदीद में अल्लाह ताला ने इसको बिदत बोला है, कि जो ये क्रिश्चियन जुलमा ने पैदा की थी, दुनिया की लज्जतों को छोड़ देना। रहब ऐसा खौफ जिसमें इस्तराब भी हो और एहतियात भी हो, ठीक है। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी कुछ होगा, कोई गेस करना चाहता है, रहब क्या है, इस्तराब वाला खौफ, तो इसका ऑपोजिट रगिब, रगबत, यानी उसी का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी तरह लफ्ज रहब में इस्तिमरार है, यानी किसी चीज का मुस्तकिल होना। गोशा नशीन और इबादत गुजार लोग, अल्लाह ताला ने यहां इसको पेश किया। आगे आप पढ़ेंगे फत्तकूनी, तो तकवा कौन सा खौफ होता है, पीछे भी पढ़ चुके हैं, इंजाम के खौफ से गुनाहों को छोड़ना, ठीक है। तीसरा लफ्ज इसी सबक में आ रहा है, खशा, खाशियों या खशियों, किसी की बड़ाई को दिल में महसूस करके उससे डर जाना। तो अब आप देखिए यहां लफ्ज क्या है, फैया या फरहबून, अभी आपको क्या बताया राहब, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, तो यहूद के उलमा में दुनिया की मोहब्बत थी, इसलिए यहां लफ्ज फरहबून है। आप ये नहीं कह सकते इधर अपनी सोच के मुताबिक कि फरहबून की जगह दे भाई या फत्तकून, बात समझे आप। देखिए कुरान का ट्रांसलेशन करना इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ लफ्ज के फर्क से मानी बदल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई या फखाशियोन, खाशा करो, नहीं, क्या मतलब है कि दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो। अल्लाह ताला यही दिखाना चाहते हैं, तुम अपने आप को इस चीज में ना ले आओ। इसी से फिर लफ्ज इस तरहब है आगे कुरान में इस्तेमाल हुआ है, किसी को डराने की कोशिश करना। तो बनी इसराइल के उलमा के अंदर ये खराबियां पैदा हो चुकी थीं कि वो दुनिया परस्त हो गए थे, नंबर एक। दूसरी बात है, लोगों का डर दिल में रखते थे, अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि देखो छोड़ो इन चीजों को। अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है कि जब किसी जगह के दीन के नुमाइंदे नंबर एक लोगों से डरने लगे और नंबर दो दुनिया परस्त होने लगे, तो वहां दीन का जवाल शुरू हो जाता है। एक और तजुर्बा मैंने किसी का सुना, आज मुसलमानों के साथ क्या, सब नहीं, याद रखिए, सब ऐसे कभी होते तो फिर तो दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन अफसोस आज मुसलमानों के दीनदारों में भी एक खास मेंटेलिटी इसी तरह की आ चुकी है। तो वो ब्रदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो किसी उलमा के ग्रुप में बैठे हुए थे, वहां एक खास मसलक को प्रेजेंट करने वाले लोग थे, कुरान का हुक्म सामने आ गया कोई, वो उस पर बात कर रहे थे। तो वो बात जब उन्होंने की तो उन्होंने अपने मसलक को साइड करते हुए बात को बदला, चूंकि कहते मैं वही आयत पहले सुबह किसी और आलिम से अपने उस्ताद से सीख के गया था, तो मुझे उसकी बारीकियां पता थी, तो मैंने उन स्कॉलर जो भी थे अपने बहुत वेल नोन स्कॉलर थे, तो उनसे कहा एक्सक्यूज मी, आपने ये बात की है लेकिन ये देखिए इस आयत में ग्रामर की रोशनी में ये वो बात सब आ रही है, तो आप इससे इत्तफाक करते हैं। तो जब बात ही इतनी मुदलल थी, जैसे आप देखिए ना मैं आपके साथ जो बातें कर रही हूँ डिक्शनरी की कर रही हूँ ना, तो इसको तो नॉन मुस्लिम भी वेरीफाई कर सकता है। तो वो कहते हैं कि बात थी, वो कहते हैं यस वी एग्री विथ यू। कहते हैं मैंने फिर सवाल किया, जब आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हैं तो मैंने तो आपकी बहुत स्पीचेस सुनी है, आप तो ये मौजू नहीं लेकर आते स्पीचेस में, वाई? तो उन्होंने कहा बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन दीज थिंग्स, अभी लोग जहनी तौर पे तैयार ही नहीं हुए कि वो इस मौजू को सुने, तो हम फिर वो बातें लाते ही नहीं अपनी बातों में। ये है वो बात जिसको आगे अल्लाह ताला ने कहा कि वला तलबिसुल हक बिल बातिल वतक्तुमुल हक वअंतुम तालमून। खुलासे के तौर पे अगली आयतों को भी साथ लेंगे ना, फिर आपको एक पूरी पिक्चर समझ आएगी कि आज उम्मत मुस्लिमा के जवाल की वजूहात में इतनी बड़ी वजह ये क्यों है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तफसीरें, पिक एंड चूज, किसी को हाईलाइट कर दिया, किसी को दूसरी तरफ कर दिया और बात को बदल दिया। अल्लाह ताला आपको मुझे हमेशा इस चीज से बचा के रखे। फरहबून से बात समझ आ गई, मुसलसल खौफ और दुनिया की चीजों से खौफजदा हो जाना। और यहां याद रखिएगा एक बात, ये पूरा रुकू है छोटा सा लेकिन मजहबी तबके के ऊपर तनकीद इतनी भरपूर है, कैसे लगता है किसने पूरी सूरत में जो बनी इसराइल के आम लोगों के रवैये सामने आएंगे ना उसकी वजूहात खोल दी। क्यों? क्योंकि मजहबी तबका जो होता है ना उनका बहुत असर होता है, ये एक बात करते हैं हजारों के मजमे में जाकर हजारों में वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। आप सोचते हैं कि दीनदार सिर्फ दीनी मामलात पे असरअंदाज होते हैं, नहीं, वो दुनियावी पे भी होते हैं। दीनदारों को बहुत मुख्तात होकर बात करनी चाहिए। एक वक्त होता है माल, माल की मोहब्बत होती है, माल एक खास हद तक बढ़ जाए ना तो आपको पता है कि माल किस में बदल जाता है, पावर, अथॉरिटी, बड़ापन, मुझे मानो, माल से ज्यादा ताकत काम आती है इंसान के। बाद जब माल लगाए तो वो काम नहीं होता लेकिन एक बड़ा बंदा फोन कर दे तो वो काम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह दीनदार लोग अगर उनका तज़किया ना हो, हम हर एक को नहीं कहेंगे, याद रखिए दुनिया में इस वक्त आपको जितने दीनदार दिख रहे हैं जो भी दीन की खिदमत कर रहे हैं आप उनमें से किसी के बारे में बुरा ना सोचें, मुझे आपको कोई हक नहीं कि किसी आलिम दीन, किसी मुबल्लिग, किसी भी मसलक का कोई हो कि हम उस पर शक करें, नेवर डू दिस, छोटा मुंह बड़ी बात है। दीनदार अपने मसले खुद भुगते हैं लेकिन मुझे आपको तो बस अपनी फिक्र करनी है कहीं मेरे अंदर तो ये बात नहीं आ गई है। यहूद के उलमा मदीना में एक किस्म की अपनी मोनोपोली कायम कर चुके थे, वो जिसको पंजाबी में या उर्दू में क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा। मदीना के लोगों के पास तो ना दीन था ना दुनिया थी, सीधी सी बात है। तो जब ये हिजरत करके मदीना में आए ना तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी जगह बना ली। एक तो सुनार थे ना तो हथियार बनाने लग गए, और हथियार बेचने के लिए नसारा ये जो लोग थे औसर खसरे जिनको लड़ाते थे, उसके नतीजे में जंगें लगती थी, जंगे बवास भी हुई उसी में। इसी तरह से ये लोग दीन के नाम पर इतने मारूफ हो चुके थे मदीना में कि इवन मुशरिक लोग भी इनके पास आते थे मसले पूछने, क्योंकि है जो कोई नहीं था, जहां जगह खाली होती है फिर जो सामने आता है लोग उसको ले आते थे। अब इन लोगों ने मदीना के लोगों में एक बात मशहूर कर दी और वो क्या था कि हमारा आखिरी नबी आने वाला है। इनकी किताबों में याद बिल्कुल खुल के थी कि एक आखिरी नबी रह गया ईसा अलैहि सलाम के बाद जिनको आना है, और वो आएंगे तो हम उनके साथ मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि ये तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे थे। मारे खाई इन्होंने टीटस से, बुख्त नसर से, इधर मार खाई उधर गए, जैसे आज दुनिया में इस वक्त मुसलमानों को मारे पड़ रही है ना। सीरियंस आ रहे हैं, अब बॉस्नियंस जा रहे हैं और अफगानीज जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि नबी की उम्मत इस तरह असाइलम पे आए, नबी की उम्मत उनकी बेटियां सड़कों पे भीख मांगे। मैंने जर्मन में इतने सीरियंस देखे हैं कि आप हैरान होंगे। मुझे वहां के साथियों ने बताया कि जर्मन गवर्नमेंट इज सो इंटेलिजेंट गवर्नमेंट, दे आर टेकिंग ऑल एजुकेटेड सीरियंस एंड बच्चों वालों को ले रहे हैं। वाई? एजुकेटेड लोग आएंगे हमारे मुल्क को काम देंगे, टैक्स, वो कहते हैं उनके अपने मुल्क के लोग टैक्स देने वाले अब शायद 27 तक, यानी 2027 तक शायद 10% रह जाएंगे। अपनी नस्लें उनकी इंस्टिंक्ट हो रही हैं, नफ्स परस्ती ने औलादें पैदा करने से रोक दिया। वो बाहर से पढ़े लिखे लोगों को बुला रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्री चलाएं, और बच्चों को क्यों ले रहे हैं, ताकि एक दो नस्लों के बाद ये हमारे ही होंगे। और वहां मुझे जिन्होंने बताया, जगह भी दिखानी चाहिए, कि जो सहूलतें वो इन लोगों को, रेफ्यूजीज को दे रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले एक आम अच्छे खाते पीते घराने के पास भी वो सहूलतें नहीं है। वो उनको खुशी खुशी से वेलकम कर रहे हैं। क्यों मुसलमान टूटे? वो कहते हैं ना कि बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, ये क्यों है? अल्लामा इकबाल आज से 200 साल पहले रोके गए कि रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। कभी आप भी तो कभी घर बैठ के सोचें कि ये सारी बर्क मुसलमानों पे गिरनी है। आज दुनिया में मैंने किसी से पूछा भी ये सवाल किया कि ये बताएं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी जंगें लगी हुई हैं, जहां भी हैं, हमें से कोई सरोकार नहीं है, क्या कहीं कोई दो नॉन मुस्लिम्स की भी लगी हुई है? हर जगह एक तरफ मुस्लिम, दूसरी तरफ कोई भी नॉन मुस्लिम, क्योंकि तख्सबहुम जमीयन व कुलूबहुम शत्ता, या इसका अपोजिट कर लीजिए। तो याद रखिए, बनी इसराइल ने इसी तरह मारें खाई थी माजी में, जैसी आज हम मुसलमान खा रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ उसी को बात करके कहते हैं, वा मिनू बीमान जल तुम मुसद्दिक लिमा माकुम, और ईमान ले आओ, मान जाओ। लफ्ज देखिएगा आमिनो, इसके आगे क्या लगा हुआ है? अब आपको मेरा लिए आदत हो जाएगी हर लफ्ज के आगे पीछे देखने को। जैसे रिश्ता करना होता है ना, तुम लड़की नहीं देखते, उसका खानदान भी देख रहे होते हैं, इसका अगला पिछला देख लो। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुरान के एक एक लफ्ज के आगे पीछे जरूर आप देखा करेंगे। हालांकि मैंने वो फरहबून से पहले जो फा थी वो नहीं बताई आपको, बस यहां ये कह लीजिए कि राहब से पहले फा लग गई। कैसे नहीं हो सकता था भाई? या इरहबूनी, नीफा, फौरन डर जाओ, डोंट टेक एनी टाइम, फौरन इंतजार ना करो, मान जाओ। ठीक है, तो वाह मीनू और ईमान लो, ये वाह में भी एक क्यामत है, वो छोड़ देते हैं अभी, आप पे ना क्यामत टूट पड़े इतनी मुश्किल बातों की। लेकिन यहां बराह रास्त दावत दी जा रही है कि नबी सल्लम को मान जाओ, ये दावत है। लिखें, हम कहते हैं ना कि नॉन मुस्लिम्स को दावत देना है, फिर ना माने तो फिर वो पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह ने मदीना के यहूद को कब दावत दी? ये आयत 41 में दी है, वह आमिनो और ईमान ले आओ, बी मुस्लिम, बा साथ। देखिए, आमना के बाद बा लग जाएगा तो और माना, आमना के साथ ली लग जाएगा तो और माना, आमना के साथ कुछ भी ना लगे तो और माना। यहां आमना भी तस्दीक, तुम्हें कोई नया कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट अपने पुराने कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते थे कल तक, आज उसमें अशहदु अन्ना मोहम्मद को शामिल कर लो। राह रास दावत है मुसलमान होने की। अच्छा जी, अनजल तू मुसद्दिक लिमा माकुम, क्यों कहा भाई? ईमान ले उसको जो मैंने नाजिल किया। अब जरा इस आयत पे नजरें जमाएं, तो क्या ये आयत इस तरह से नहीं हो सकती कि वामिनो बिल कुरान, एक सूरत। सेकंड चॉइस क्या हो सकती थी? आमनु बिर रसूल, चले और क्लियर करें, आमनु बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता था कि नहीं? लेकिन इन सब को कट डाउन करके लंबा जुमला बोला गया, आमीनू अमर का सीख है, बीमा अनजल तू, जो मैंने नाजिल किया वो क्या है? मुसद्दिक लिमा, तस्दीक करता है उसको। अच्छा, यहां ली की भी कोई जरूरत नहीं थी, मुसद्दिक माँ कह सकते थे, तस्दीक करो उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है। सवाल पैदा होता है कि माकुम क्या है? तुम सबके पास, मदीना वालों के पास क्या क्या था जिसको उन्होंने मानना था? नंबर एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर दो कुरान जो आपके पास आया था, नबी सल्लम की शरीयत, सब कुछ मानना था। वला तकून अव्वला काफिरिन बिही, और ना हो जो तुम पहले ही काफिर इसके। यहां देखिए काफिरी भी है साथ, लफ्ज काफिर और है, काफिरा बा या काफिरिम बी बिल्कुल और है, ना हो जाओ तुम पहले ही इसका इनकार करने वाले। कौन पहले थे मुनकर नबी सल्लम के? क्या मुशरिकीन ने मक्का अल्लाह के नबी का इनकार नहीं कर चुके थे 13 साल? तो फिर यहाँ यहूदे मदीना को क्यों कहा कि देखो तुम इनका इनकार करके पहले काफिर ना हो जाओ, अहले किताब में से पहले ना हो जाओ। यानी मुशरिकीन ने मक्का तो खुद को किसी दीन पे कहते भी नहीं थे अब, तो तुम मदीना में आने वालों में पहले ना हो जाओ, रस्म ना डालो। क्योंकि आपको पता है कि एक मजहबी आलिम का असर बहुत होता है। किसी इलाके में आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह का दीन आता है, अल्लाह का नबी आज नहीं आता लेकिन अल्लाह का सच्चा दीन आ जाता है। हम लोग जो होते हैं ना, वो वहां के उलमा की शक्ल देख रहे होते हैं। हाउ विल दे वेलकम देम, व्हाट शुड बी देयर रिस्पॉन्स, इनका क्या रिस्पॉन्स है? अगर वो दीनदार कहेंगे ना, माशाल्लाह हमारे शहर में एक बहुत अच्छे लोग आ गए हैं, बहुत आप लोग उनसे फायदा उठाएं, देखिए लोग जोक दर जोक जाएंगे। और दीनदार कहेंगे जरा संभल जाना, ये तुम्हें नहीं पता अंदर से कौन है, ये किसके चीले हैं, इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है और इनकी क्या सोच है, तो लोग सांप से कम डरेंगे, उनसे ज्यादा डरेंगे। ये मुराद है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदे मदीना मान लेते, बड़े मैं दिल की मोहब्बत से कह रही, अगर मदीना के यहूद ने नबी सल्लम को वेलकम किया होता ना, वल्लाही तो ये जंगे ना लगती जो नबी की जिंदगी में रही, और मुसअब बिन उमैर इतने शुरू में ही ना अल्लाह के पास चले जाते और हमजा ना आते। क्योंकि हर जंग के पीछे यही कहानी है, और कोई एक रात हमारे नबी को भी तो सुकून की नींद आ ही जाती मदीना में रहकर। कितनी सौबतें सह कर आए थे मदीना वालों के पास नबी सल्लम, ये किसको पता था? जिन्होंने हिजरत की उनको पता होता है कि पाँव नहीं दुखते दिल भी दुखता है, कांटे तो पाँव में चुभते हैं वहां दिल में कांटे चुभते हैं जब बंदा मोहब्बतों को छोड़ता है। आगे से लोगों को क्या कदर है कि हमने इसकी क्या कदर पाई। अगर यहूद उनको जरा सा थपथपा देते तो मदीना में इस्लाम 10 साल नहीं लगने थे, 1 साल में फैल जाना था। मदीना के लोग अच्छे थे लेकिन बाहर के मसले इतने उठे रहते थे हर वक्त मदीना में। अब एक जंग फारिग हुई, अब दूसरी, अब उधर साजिशें चल रही हैं, अब उधर अल्लाह के नबी की बीवियों पर इल्जाम लग रहे हैं, उधर आपके साथ ये मसले हैं, तो वो फोकस ही नहीं हो पा रहे थे मदीना के निजाम को देखने के लिए। वल्लाही ये है असल में रोल दीनदारों का। अल्लाह तआला कहते हैं तुम पहले ना बनो। ये बात इतनी बात अभी खुलासा हो गया ना, समझ आ गई। आगे चलिए अगली बात। यहां देखिए नंबर एक आमिनों में नंबर वन लिख ले, हुक्म है एक। नंबर टू लिखिए ला तकूनो, ये डोंट्स है, यानी डूज एंड डोंट्स यहां आप लिखेंगे सारे। सबसे पहला हुक्म इधर क्या है? औफू बिल अहदी, क्लियर है, वन लिख ले। नंबर दो फैया या फरहबुन, सेकंड डूज अल्लाह का डर रखो। थर्ड रूप आमिनू बी मानजल तुम सद्दीक अली माकुम। अब डोंट्स देखिएगा, नंबर एक ला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, हो गई बात। नंबर दो वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला, और ना तुम खरीदो मेरी आयतों की बदले में थोड़ी कीमत। ठीक है, कितने डोंट्स हो गए? दो। आगे फिर क्या आ रहा है? वैया या फत्तकुन, इसको किधर लिखेंगे? डूज में। आगे देखिए वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, क्या है? डोंट। वतक तुमुल हक का आपको देखने में क्या लग रहा है? डू लग रहा है, लेकिन है ये भी डोंट, आगे जाके बताऊंगी आपको। फिर कहीं जाके वाकी मुसलात व आतुजकात अवर कौमरा के नारा। आप अगर इस तरतीब पे थोड़ी सी पहले ही बात कर लें, यहूद को इतने डूज एंड डोंट्स देने के बाद नमाज रोजे जकात की बात की गई है। वजह, हम तो कहते हैं दीन नमाज से शुरू होता है, सवाल समझ आए? आयत में पहले ये इधर उधर की बातें की जा रही हैं, जिसमें से तीसरी बात पे अब हम इस वक्त पहुंचे हैं कि ला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला। तो चलिए फिर इसको समझ लें, तो फिर मैं आपसे ये सवाल दोबारा करूंगी जब हम अकीमुस्सलात पे आएंगे।